तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिवाम पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान पुरुषं त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां चरणाधिपति कल हमने प्रसंग को यहां तक हमने बढ़ाया था कि कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा अपने वैजयंती माला को निकाल करके स्वयं उनको पहना दिया, अपना पीताम्बर भी उनको पहना दिया और उनको कहा गच्छ उद्धव सौम्य पितृणो प्रतिभाव आप जाइए, आप मेरे मित्र और सखा हैं, आप उनको जो विरह में तड़प रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे पति अत्यंत अधिक प्रीति है, उनको सांत्वना दें और मद वियोगावधि हमारे पति जिनका वियोग अवधि तक है अर्थात माता पिता से भी अधिक बढ़ करके जिनका वियोग हमारे लिए है उन लोगों को भी हमारे संदेश से उनका यह वियोग दूर करें। आपके कहने से नहीं होगा, मैं ये जानता हूं, इसलिए मेरा संदेश मेरे शब्दों को एज इट इज जैसा है मैं कह रहा हूं वही देंगे। उनको सोने के रथ पर बैठाया, कंस का रथ, कंस के मारे जाने के बाद में कृष्ण के अधीन सब कुछ था, सोने का रथ में बैठाया और इसके बाद में उनको विदा किया। उद्धव ब्रज में पहुंचे, उद्धव जी को यह डर था कि मैं जा तो रहा हूं किंतु कृष्ण को छोड़कर के मैं कैसे रह सकता है, एक मिनट भी उनको छोड़ करके रही है। कृष्ण ने कहे जाओ तो सही, तुम वहां उपलब्धि यह करेगा कि मैं यहां पर पार्टली हूं, आंशिक रूप में हूं, मैं पूर्ण रूप से तो ब्रज में ही हूं, तुम जाकर के उपलब्धि करेगा। और जब सचमुच में कृष्ण वहां गए तो उस समय वियोगात्मक वो ब्रज नहीं था, एक मिनट के लिए क्षण भर के लिए उन्होंने कृष्ण का संयोगात्मक ब्रज का दर्शन कराया। उसमें लाखों गायें अपने उधों से अपने स्तन के बाहर से मिट्टी उनका छू रहा था, एकदम बड़ी विशाल विशाल गायें और बड़े सुंदर सुंदर बच्चे फुदक रहे हैं और उसमें शब्द हो रहा है ये दोहनी लाओ बच्चों बछड़ों को छोड़ो गायों को दोहो और चारों तरफ में गाय दोहने का शब्द हो रहा है। और देखा जब कृष्ण वहां पर ब्रज में जैसे थे चारों तरफ में आनंद आनंद छा रहा है, चारों तरफ में फूल खिले हुए हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, किसी को वियोग का कोई चिन्ह नहीं दिखा उनको। घरों में गोपियां मणि स्तंभ पर प्रदीप रख कर और दधि मंथन कर रही हैं और तन्मय होकर के कृष्ण की लीलाओं को गा रहे। माने कृष्ण अभी हैं, अभी गोचारण के लिए गए हैं, अभी आने ही वाले हैं। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। आंखों से सबके आंसू बरस रहे हैं और वही कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करती हुई और यही गा रही हैं। कृष्ण के लिए ही मक्खन भूल गई हैं, ये कृष्ण मथुरा चले गए हैं, प्रेम से विवश हो रही हैं। उनको यही याद हो रहा है ये कृष्ण अभी आने वाले हैं, उन्हीं के लिए मक्खन निकल भूल गई जैसे कृष्ण तो मथुरा गए हैं। उद्धव जी देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, सचमुच में कृष्ण यहीं पर है, मथुरा में नहीं है। गोधूली हो गया, उस समय रथ से उतर करके रथ को खड़ा कर दिया पास में कहीं और नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा को खबर दी गई उद्धव जी आए हैं। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया आकर के बेटे और उसको घर में ले गए। उनको कुछ खाने के लिए भी देना है ना, बहुत दूर से आया है, क्या दिया जाए। घर में तो रसोई जब से कृष्ण गए तब से बनी नहीं, चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बुन दिया, बर्तन सब औंधे पड़े हैं, माजे भी नहीं गए, किस लिए कौन माजे जब खाने वाला नहीं रहा। मकड़ों के तंतुओं से वो चूल्हा सब भरा पड़ा है, अभी पर साफ ही नहीं किया गया बहुत दिनों से, इसलिए गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ से कहकर दूध और चावल का बना हुआ खीर, वो भी चीनी नहीं, ऐसे ही बना करके लाया गया, उनको दिया गया। इनको तो लगी थी भूख, इन्होंने भर पेट खाया और इसके बाद में जब स्वस्थ हुए तो नंद बाबा पास में बैठे पूछना चाहते थे, ये मेरा कन्हैया कैसा है, बेटा कैसा है। और जहाँ ये कहें कन्हैया कैसा, तहाँ गला भराए, आंखें भराए, बोली ही नहीं निकले। बहुत प्रयास किया, जब नहीं कर सके, कंठ अवरुद्ध हो गया उनका, बस कृष्ण का ये सब उनकी लीलाएं, बाल लीलाएं, यहाँ जाना वहाँ जाना, उनकी गोदी में आना यशोदा की गोदी में, और जो लीलाएं थी याद आने लगी, किसी तरह से नहीं कह सके। अंत में किसी प्रकार से साहस करके बोले, हमारा भैया वसुदेव ठीक है, उसके ऊपर में बड़ी विपत्तियां आई, उसके सारे लड़कों को ये दुराचारी कंस ने मारा और अपने पापों से ही वो मारा गया। कृष्ण ने नहीं मारा ये नहीं कहा, अपने पापों से ही वो मरा। अच्छा हुआ, अजबद जदवंशी लोग तो इधर उधर भाग गए थे, अब आ गए हैं, कुशल से तो हैं, हमारा भैया कुशल से है। जब थोड़ा सा गला साफ हुआ तब फिर वही बोलना चाहते हैं, हमारा कृष्ण कुशल से है, किंतु फिर नहीं बोल सके। फिर कह रहे हैं उनकी लीला की स्मृति आई, कह रहे कि देखो ब्रज में ऐसा कोई स्थान नहीं है उद्धव जो कृष्ण के लिए तड़प नहीं रहा हो, वृक्ष तक भी तड़प रहे हैं उनके लिए, आज बछड़े दूध नहीं पीते हैं मैया का, सखा लोग गोचारण करने के लिए नहीं जाते, गायें चरती भी नहीं है, गायों का वंश अब समाप्त होने को है, कृष्ण कितना प्यार से उन गायों को सहलाता था, वो गायें स्तन से उसके मुख में दूध देती थी, अपने बछड़ों को नहीं देती थी। आज ब्रज में कोयल नहीं बोलती, मोर नाचते नहीं हैं, सारा वीरान पड़ा हुआ है। मैं कृष्ण को भुलाने के लिए, मन से हटाने के लिए, मैं घर में रहने से ये होता था कि कृष्ण इस घर में आया, ऐसे किया, यहीं पर उसकी मैया ने बांधा, ये सब यादें आती थी। इसलिए मैं बाहर चला गया जमुना के किनारे, ये कृष्ण को भूल जाऊं, बहुत भुलाने की चेष्टा की। किंतु वहां पर गया तो जमुना का कण कण कह रहा है, जिससे कृष्ण इसी में खेले कूदे, बच्चों के साथ में तैरते। यहाँ पर पनघट था, पनघट माने क्या, यहाँ पर पानी भरा जाता है उसको पनघट कहते हैं। ये पनघट कुछ और निराला है। पन माने क्या होता है, प्रतिज्ञा। पन का एक और भी अर्थ होता है प्रतिज्ञा। कृष्ण ने पन किया, प्रतिज्ञा की, ये गोपियों देखो मैं आऊंगा, और गोपियों ने भी प्रतिज्ञा की ये हम लोग भी आएंगे, वहीं पर मिलेंगे। तो जहां पर पन के लिए मिलते हैं वो है पन घट। घट माने घड़ा। घड़ा पानी भरने के लिए नहीं, पानी भरने के लिए जाती हैं तो पानी भरा कि नहीं, किंतु वह घड़ा रूपी हृदय जो है वो प्रेम से जरूर भर गया। यह है घट। जाती थी प्रेम से, उनका हृदय भर जाता था। कृष्ण का भी हृदय रूपी घाट प्रेम से भर जाता था, इसलिए उस घाट पर जाते थे जहां पर उनका मिलन होता था सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में। नंद बाबा की गोदी में चढ़ करके जहां स्नान करने जाते, आज घाट भी आकुल होकर के उलाहना देता है कि मेरे कृष्ण किधर गया। इसलिए वहां पर भी मुझे चैन नहीं आता। जितने वृक्ष हैं, क्रीपर्स हैं, लताएं हैं, वो कृष्ण को ढूंढती हैं, इसलिए वहां पर मुझे याद आती है। मैं कभी गोवर्धन में जाता हूं उनको भूलने के लिए, वहां देख कृष्ण के चरण चिन्ह चारों तरफ में भरे पड़े हैं, वो स्मरण दिलाते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं मैं ढूंढ पाता जहां कृष्ण को भूल जाऊं। ये सभी ब्रजवासियों की स्थितियां हैं। जब खूब रोने लगे तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि कृष्ण ने तो मुझे भेजा था सांत्वना देने के लिए, तो सांत्वना के तो दो शब्द कहने चाहिए, संदेश तो पीछे कहेंगे, पहले तो जो रो रहे हैं इनको तो शांत करूं। किंतु सांत्वना के शब्द क्या हैं? ये कहा जाए रोइए मत। पहले तो ये समझे रोइए मत। अब वो सोच रहे हैं कि मैं ये कहूं कि नहीं, ये रोइए मत। यदि आदमी अपने बंधु बांधवों के लिए रोता है तो हम कह देते हैं भाई क्यों रोते हो, कृष्ण ही को समझो, और तो सब तो मरने वाले जीने वाले हैं, उनके वियोग में क्यों कातर रहो, भगवान का स्मरण करो। इनको ये कहेंगे जो रो मत, जिसके आंखों में एक बार कृष्ण के नाम से स्मरण से आंसू आ जाए, समझो इसका जीवन कृतार्थ हो गया। अपने लिए तो सबको आते हैं, किंतु कृष्ण के लिए जिनके आंखों से आंसू आए, समझो जे इसका जीवन कृतार्थ हो गया, ऐसा सौभाग्यवान जगत में कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण होकर के कह रहे हैं नैनं गलदाश्रधारुया गदगद बद रूप धया गिरा पुलकर निकितं वपुः कदा तो नाम। हे प्रभु, हमारा हृदय वज्र के समान है, आपका नाम इतना अपराकृत है, इतना शक्तिशाली और मधुर है, आकर्षक है, कि यदि कोई हृदय से नाम लेता है जरूर उसके आंखें नम हो जाएंगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। किंतु महापराधी होने के कारण, दुर्दैव होने के कारण नाम में रुचि भी नहीं है, नाम लेते हुए आंखों से आंसुओं की धारा नहीं गिरती। ऐसा कब हमारा दिन होगा जो आपका नाम लेते हुए आंखों से आंसुओं की धारा। भागवत में भी ऐसा कहा गया तदस्मसारम हृदयम बदेर, और वह हृदय हृदय नहीं पत्थर है, जो भगवान का नाम लेते ही आंखों से आंसू नहीं गिरते और हृदय तरल नहीं हो जाता, द्रवित नहीं होता, वो हृदय हृदय नहीं है, पाषाण है। और नंद बाबा कृष्ण के लिए हाय हाय करते हुए रो रहे हैं, तिनको कैसे मत कहें जैसे तुम मत रो, ये तो बहुत अच्छा काम है कृष्ण के लिए रोने, इनका जीवन ही कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आज तक किसी को नहीं देखा था कृष्ण के लिए रोते हुए, इस महात्मा को देखते हैं कि कृष्ण के लिए रो रहे हैं। फिर सोचे जो कहूं जो खूब रो, इसे सांत्वना उनको हो जाएगी, जो खूब रो ये तो कहना उचित नहीं, तो क्या कहूं जो रो मत या कहूं जो रो, अब कैसे सांत्वना होगी, यदि कहते हैं जो खूब रो तो सांत्वना तो हुई नहीं, और यदि कहते हैं जो रो मत फिर क्या होगा। उनके शब्दकोश में ये नहीं मालूम पड़ा, इतने बड़े भारी विद्वान बृहस्पति जैसे खोज करके ढूंढ करके भी सांत्वना का के किन शब्दों से इनको कहूं, उनके शब्दकोश में नहीं आया जो क्या कहूं। अंत में बहुत तरह से देख करके विचार किया, सचमुच में इनका जीवन धन्य है, महाभागा ये हैं, आज कृष्ण के लिए ये रो रहे हैं, इनका तिरोह हो रहा है। आई कथा सुनो, उसको जल्दी से रख करके चले जाओ, यदि सुन सको तो अच्छा है। तो सोच रहे हैं कि सचमुच में इनका जीवन धन्य है, इसलिए उनके मुख से बरबर से ही निकल गया, वो सचमुच में आप और यशोदा मैया सौभाग्य, बड़े भारी सौभाग्यवान है, ऐसा जैसा किसी कोई जगत में नहीं है, जो कृष्ण को अपना बेटा मान करके उसके लिए रो रहा है। आज तक तो मैंने ऐसा प्रेम देखा नहीं, इसलिए महाभावो बड़े सौभाग्यवान आप लोग हैं, जिसको आप जगत में जो लोग उनको भगवान कहते हैं, जो बेटा किसी का नहीं है उसे आप बेटा मान करके उसके लिए रो रहे हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। इतना कहना था कि वो डकर करके और जोर जोर से रोने लगे। उद्धव मैंने समझा था, किंतु अब तू बुद्धिमान हो गया है, तो मैंने देखा जो तुम्हें अभी अकल के दांत अभी टूटे नहीं है, अभी नहीं आए हैं तनिक भी अकल, कृष्ण के साथ में रहने से भी तुम्हें अकल नहीं हुई, तुम नहीं जानते जो किसको सौभाग्यवान कहते हैं किसको दुर्भागा कहते हैं। यदि खोजो विश्व ब्रह्मांड में हमारा जैसा दुर्भागा और कोई है, तुम विचार करके देखो, तुम न जाने कैसे आवेग से कह दिया कि आप बड़े भारी सौभाग्य हैं। तुम ये कहते हो जो आपका बेटा भगवान है, साधारण नहीं है, किंतु मैं तो अब तक ये सोचता था कि हमारा लाला है, वो करवट नहीं ले सकता, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मक्खन में देरी हो गई तो रोता है, क्रोध होता है। अरे भगवान को कभी क्रोध होता है? भगवान कभी चोरी करता है? उसको किस चीज की कमी है जो चोरी करेगा? और तुमने इस बच्चे को, नन्हे से बच्चे को भगवान बना दिया। हमने देखा है उद्धव अपने हाथों से घरों घरों में मक्खन चोरी करता, पकड़ा जाता, गिड़गिड़ाता, ये सब ब्रह्म के लक्षण हैं, भगवान के लक्षण हैं। और कहता जी मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो। अरे तूने भोर होते ही हमें भेज दिया गौओं के पीछे पीछे, और शाम को मैं लौटाया, फिर मैंने कब खाया मक्खन? ओ मैं तेरा बेटा नहीं हूं, शायद तेरे कोख से जन्मा नहीं, इसलिए तुम ऐसा हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तब मैं तुम्हारे पास में रहने से क्या अब मैं चल ही जाऊं, तू मेरी मैया शायद नहीं है इसलिए ऐसा कह रही हूं। सुनते ही यशोदा जी का मन खराब हो गया, नहीं नहीं बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुमने मक्खन नहीं खाया, तुमने मक्खन नहीं खाया, अब यशोदा जी कह रहे तैने मक्खन नहीं खाया, और कृष्ण क्या कह रहे हैं रोते हुए, मैया मैंने ही माखन खायो। पहले कह रहे थे मैया मैं नहीं माखन खा, और अब कह रहे मैया मैंने ही माखन, और यशोदा जी कहेंगे तैने माखन नहीं खायो, और गोदी में लेकर के भर लिया, रोने लगी। अब नहीं आज से कहे, अब मैया आज से तो नहीं कहेगी, अब नहीं कहे। ये सब लीलाएं का स्मरण होने का है। तो बेटा हमारा एक बेटा था, उसको साधारण बेटा मैंने समझा, वो भी अबोध बालक मैंने सोचा, ये अबोध बालक। अब मुझे पता हुआ तुम कह रहे हो ये तो परब्रह्म भगवान है, तो भगवान हमारे घर में बेटे के रूप में आए, और ऐसा हमारा दुर्भाग्य संसार में जो आज हमारे घर से निकल करके वो मथुरा चला गया, हाथ में मणि आई और निकल करके चली गई। अब ऐसा दुर्भागा कोई संसार में होगा जिसका बेटा भगवान होकर के आया और मैं उसका पालन पोषण नहीं कर सका, उसे प्रेम नहीं दे सका, प्रेम के अभाव में वो मथुरा में हमारा बेटा चला गया और मैं अभी जीवित हूं। अरे पिता तो एक थे राम, दशरथ महाराज, और राम वन के लिए चले गए, तो उन्होंने कहा यह राम, हा राम, और तीसरी बार मुख से नहीं आया, प्राण छोड़ दिया, और मैं अभी तक मैं जीवित हूं, इतना योग्य हमारा लड़का, और वो भी भगवान, और हमसे बिछुड़ गया, और अभी कैसे मैं जीवित हूं। और रोने लगे। उद्धव जी ने कहा ये तो लेना का देना हो गया, मैं समझाने के लिए आया, और बतलाओ तो, और डकर डकर कर। अब उनको जो शब्द था वो भी कहा मैंने गलती किया, ये नहीं कहना चाहिए। फिर सोचते हैं कि मैंने गलती किया कि नहीं, देखते गलती तो किया नहीं, सचमुच में इनके जैसा सौभाग्यवान नहीं है, किंतु मैं क्या समझा, उनके प्रेम को इतना देखा जैसे एवरेस्ट 7 मील ऊंचा या कितना ऊंचा एक आदमी बावना आदमी देख रहा हो, टोपी गांधी कैप लगा रखा हो, तो वो कैसे देखा, उसकी जड़ से टोपी गिर गई, कितना ऊंचा। अब उनको मालूम हुआ कि मैं सोचता था कि कृष्ण के भक्तों में हमसे कोई बढ़ करके नहीं, अब मैं देखता हूं कि ये कहां हिमालय जैसा इनका प्रेम, वात्सल्य प्रेम, और कहां मैं दुर्भागा, यदि शोचनीय हूं तो मैं। अब उनको मालूम पड़ा जहां पर वीरान होता है ना, मरुभूमि होती है, वहां रेण का वृक्ष एक होता है, रेण समझते हैं, अरंडी, अरंडी समझते हैं, वो कितना ऊंचा होगा, 10 हाथ 12 हाथ से अधिक नहीं ऊंचा, तो जहां 5-7 बड़े बड़े कुछ होते भी हैं, तो उसमें रेणी होती है, तो वो ऊंचे होते हैं, किंतु मरुभूमि में सबसे ऊंचे पेड़ हो सकते हैं वो, किंतु जहां बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, अशोक के वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे आम के बड़े बड़े वृक्ष हैं। अभी बेजर में हम लोग जाएंगे कैलिफोर्निया के पास में, वहां पर 300 फुट 350 फुट और उसके अंदर में एक बड़ी बस भी चली जा सकती है, वो गिरा हुआ इतना कम है, ये घर जैसा गोलाकार और इतना ऊंचा, उसके सामने ये रेणी का वृक्ष, रंड का वृक्ष कितना ऊंचा होगा। आज उद्धव जी को मालूम हुआ जी हमारा जो भगवान के प्रति भक्ति थी, और मैं समझता था कि मैं सबसे ज्ञानी और परम भक्त हूं, मैं तो कुछ भक्ति नहीं इनके सामने, कुछ बोल नहीं सके। सवेरा हो गया बातचीत करते, आज यशोदा मैया तो ऐसे ही अंधी हो रही, स्मरण से कुछ बोल ही नहीं सकी। नंद बाबा तो रो भी रहे थे, कुछ बोल भी रहे, वो बोल नहीं सकी, इतना गंभीर उनके अंदर में भी रहे। सवेरा हो गया, सुनते सुनते सवेरे वहीं पर एक कुंड है, कुंड में स्नान किया, और अंधी करने के लिए गायत्री इत्यादि करने के लिए, और वो कुंड में स्नान करके जा रहे थे, इतने में देखा क्या, सुंदर अशोक के वृक्ष, कदम के लाखों वृक्ष, एक दो नहीं, सघन छाया, तरह तरह उसमें फूल खिले हैं। कदम्ब के भी, केली कदम्ब के और ऐसे फूल होते हैं, बहुत मतवारा उसमें गंध होता है, और इतना सघन कुंज इसमें कोई प्रवेश न कर सके। और उसमें उन्होंने देखा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, लाखों गोपियां विरह में पगी हुई वहां पर बैठी हैं। उद्धव जी ने उनको नमस्कार किया। थोड़ी देर आगे बढ़े तो वो गोपियां बातचीत कर रही, आज ब्रज में हमने देखा सोने का एक रथ आया है, ये कौन आया? वही अक्रूर तो नहीं आया जो क्रूर अक्रूर नाम रखा, किंतु है क्रूर। वो आया और आकर के कृष्ण बलदेव को, हमारे प्राण को ले गया। अब हम लोग तो सब मरे पड़े हैं, जब मरे पड़े हैं तो वो अब फिर किस लिए वो रथ पर लेकर के आया क्रूर, उसी सोने के रथ पर जो आया। उद्धव जी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं जैसे ये और सचमुच में ये रथ पर आना ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ। गोपिया कहते हैं कि जरूर ये बात ऐसी है, यहां आने की उसे जरूरत क्या थी, हम लोगों के लिए तो आया नहीं है, हमसे संबंध ही क्या था, ये उसका दूत है, हो सकता है कि मैया के लिए भेजा हो, पिता के लिए भेजा हो दूत, इस सोने के रथ पर चढ़ करके आया। तो जानती हो, एक ने कहा जे किस लिए भेजा जानते हो, इसलिए कि वो तो गरीब घर का लड़का था, गईये चराता था, हाथ में लकोटी कंबलिया, सोने के तो आभूषण थे ही नहीं, गोप का लड़का था, गईये चराता था। अब उसने देखा जैसे अब तो मैं द्वारका का महाधिराज राजा हो गया हूं, तो अपने दूत को भेजो सोने के रथ पर, वो समझेगा जैसे हमारे मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, ऐसे नहीं समझेगा। इसलिए बेटे ने अपने मैया और बाप को सांत्वना देने के लिए सोने के रथ पर भेजा है, सांत्वना देने के लिए, देखो जो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया। सुन करके इनका हृदय टुक टुक हो गया, बहुत गलती की हमको सांत्वना देने के लिए, ऐसे नहीं आना चाहिए था, खाली पैर आना चाहिए था, बहुत लज्जा उनको ही, ये पृथ्वी फट जाए तो उसमें हम प्रवेश कर जाए, बहुत गलती किया। कीर्तन में एक गोपी जानती हुई, ये है कौन, एक कहती है जैसे हाँ जानती तो है, तो ये कौन है, ये श्याम का दूत कोई होगा। कैसे, तुम समझ रही है ना, हमारे आंखों से ये जो नाक है ये बड़ी
तेज
नहीं प्रमाणिक है, ये भूल नहीं कर सकती। ये जो गंध आ रही है इस कपड़ों से, ये तो श्याम का गंध आ रहा है, ये श्याम तो, और उद्धव जी देखने में भी कृष्ण जैसे ही हैं, ठीक वैसे ही श्याम, और उनके वस्त्र भी पहन लिए हैं, उनका माला भी पहन लिए हैं, ये है तो श्याम किंतु श्याम न, श्याम बट किंतु श्याम न, श्याम तो है किंतु श्याम नहीं है। गोपियां देखो ऐसी कि वो तमाल वृक्ष को देखती हैं तो उसके पत्ते श्याम रंग के हैं, तो वो देखती हैं कि ये कृष्ण उसे लिपट जाती हैं और सोचती हैं कि आज कृष्ण मिल गए। और उद्धव ठीक कृष्ण जैसे देखने में, उम्र भी वैसे, उनके कपड़े भी पहने हैं वैसा, सुगंध भी, किंतु गोपियां उसको पकड़ नहीं रही। यही प्रेम की विशेषता है, प्रेम उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता जिसके अंदर में प्रेम है। कहते हैं ये श्याम का जरूर दूत है, क्यों, बहुत दिनों से हम जानते हैं कृष्ण का अंगों का गंध इसके अंदर में आ रहा है, इसके कपड़ों में, ये कृष्ण के कपड़े हैं, कृष्ण का ये बनवाला है, उसके गंध से आ रहे हैं, जरूर श्याम का अनुचर है। किंतु किस लिए आ रहा है, आने का मतलब क्या है। हम लोगों का संबंध था तो तोड़ ही दिया, चला गया, अब किस लिए। हाँ एक बात है, माता पिता का संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, बेटा चाहे जो तोड़ दे तोड़ देगा। यदि मिट्टी का बर्तन है, वो मिट्टी से संबंध तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है कि नहीं, खुद विचार करके देखिए। मिट्टी का बर्तन है और वो कहे जो मिट्टी से हमारा संबंध नहीं है, उसके अस्वीकार करने से होगा, क्योंकि मिट्टी का ही तो बना है। उसी प्रकार से बेटा माता पिता के रक्त वीर्य से बना हुआ है, उसका शरीर यदि अस्वीकार करता है जो मैं उस बाप का बेटा नहीं हूं, तो भी अस्वीकार करने से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रक्त में खून में शरीर में सब जगह पिता उन्हीं का भी जीवन में है, यह अस्वीकार करने से भी नहीं हो सकता। इसलिए शायद माता पिता को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तो संतना के लिए भेजा, किंतु हमसे संबंध क्या था जब भेजा। उद्धव जी देख रहे हैं सुन रहे हैं, आज तक ऐसी बातें सुनने का उनको मौका नहीं हुआ, न ऐसे कभी सुनाया और न कोई सुनाने वाला था। कहते हैं अच्छा ये देखो, इससे पूछो तो इस दूध से क्या उद्धव एक बात का उत्तर देगा। उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं। अच्छा ये बतलाओ, जो प्रेम होता है, जो कि जिस प्रेम में कोई भी मल नहीं होता, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जो प्रेम निर्मल होता है, वो कैसे टूटता है, कैसे टूटेगा जब जिसमें स्वार्थ नहीं है। देखो दो हम लक्षण दो एक बतला रहे हैं, उदाहरण। पहले जो प्रेम टूटता है, जो यथार्थ प्रेम नहीं है, नकल प्रेम है, एक है, और एक यथार्थ प्रेम होता है। पहले हम नकल प्रेम जो होता है, जिसको काम कहते हैं संसारिक भाषा में, किंतु प्रेम जैसा दिखता है वो प्रेम नहीं। जैसे एक भौंरा है, भौंरा देखा गोपियों ने, कहा जैसे ये जो जैसे सुमनस है, भौंरा है, क्या करता है, सुंदर सुगंधित प्रस्फुटित पुष्पों पर बैठता है और उसका मधु ले लेता है, जब मधु ले लिया तो फिर दूसरे पुष्प पर बैठेगा, उस पर नहीं बैठेगा। स्वार्थ था किस लिए, मधु का, जब मधु नहीं रहा तो दूसरी जगह चला गया। ताना मार रही है कृष्ण पर, कहले काले भी कृष्ण है ना, गोपियों का मधु, प्रेम का मधु आस्वादन किया, आप चले गए मथुरा में, इसलिए वो कह रही हैं, देखो ये भ्रमर एक पुष्प पर बैठा, उसका रस ले लिया दूसरी जगह, फिर उसको लिया दूसरी जगह, फिर उस पुष्प पर लौटेगा नहीं, यह प्रेम कैसा है, स्वार्थ युक्त प्रेम है, बहुत घटिया किस्म का प्रेम है। दूसरी बात और देखो, एक वन है, उसमें एक हिरण रहते हैं, इसमें बहुत से हिरण रहते हैं, जब तक उसमें छाया है, जब तक उसमें खाने के लिए घास है, वृक्ष है, सब कुछ है, तब तक रहेगा। यदि जंगल में आग लग गई और वृक्ष जल गए तो क्या करेगा हिरण, दूसरी जगह चला गया। ये जो प्रेम है, हिरण का प्रेम कैसा है, स्वार्थ युक्त है। बहुत सी चिड़ियाएं एक बट के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में या किसी वृक्ष में रहते थे, लाखों घोंसले बनाकर, कब तक थे, जब तक उसमें छाया और फल था तब तक तो रहे, फल लिया, और जहां फल खत्म हो गया, वृक्ष में आग लग गई पतझड़ से या किसी कारण से, वो सूख गया, एक भी चिड़िया नहीं रहेगी, क्योंकि उनका रहना था अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ नहीं रहा तो उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। एक भिखारी है, भीख मांगने के लिए निकला, राधे राधे कहते हुए आपके दरवाजे पर गया, कब तक खड़ा रहेगा? जब तक भीख नहीं मिल जाती। और जब जैसे भीख मिल जाती है तो अब तो मुझे जरा महाराज जी जरा दो चार मिनट ठहरिए ना, मुझसे बात नहीं, और मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत देर का निकला हुआ हूँ, अब मुझे जाना जल्दी से, बस दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि स्वार्थ जो था वो हो गया खत्म। एक विद्यार्थी है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कब तक रहता है और कब तक अपने मास्टर को आदर करता है, प्रणाम करता है? जब तक कि उसकी समाप्ति नहीं हो जाती। जब ही उसकी शिक्षा समाप्ति हो जाएगी, एक दिन के लिए भी नहीं ठहरेगा, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी नहीं ठहरता वहाँ प्रणाम करने के लिए। पढ़ा रहे, पढ़ लिया, उनसे ले लिया विद्या, और जब हो गया तो बस स्नातक हो गए, बस अब कोई समझ नौकरी चाकरी अच्छी लगी, कभी उनसे भेंट करने के लिए भी प्रोफेसर साहब से प्रिंसिपल साहब से नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं। ये सब पृथ्वी कैसी है? स्वार्थ युक्त, इसमें प्रेम नहीं है। एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, कब तक के लिए? जहां समाप्त हो गया वो बस खत्म। वेश्या का प्रेम से कहा गया, कब तक वेश्या प्यार करती है मनुष्य से? जब तक उसके पूरे पैसे को ऐंठ न ले, जब ऐंठ लेगी दरवाजा बंद कर देगी। कामी पुरुष किसी स्त्री से तब तक प्यार करता है जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, फिर उससे वो दूध में से मक्खी को जैसे हटाया जाता है हटा देगा। ये सारा संसार का ये जो प्रेम है ऐसे ही स्वार्थ से भरा पड़ा है, शुद्ध प्रेम नहीं है। अरे उद्धव तू बतला तो, जब उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था, हम लोग का भी कुछ उस प्रेम में स्वार्थ नहीं, तो कोई भी स्वार्थ नहीं, तो ये प्रेम कैसे टूट गया, बतला सकता है? उद्धव जी सोचते सोचते रह गए, शरीर से पसीना निकल आया, किंतु कोई उत्तर नहीं आया, चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े रहे। है उत्तर किसी विश्व के कोष में या किसी जगह? वही जो जिस प्रेम जो जानता है शुद्ध प्रेम, वो तो उत्तर दे सकता है। उद्धव तुम जाकर के उससे पूछ करके आना, शायद उसका उत्तर जानता हो कुछ। उद्धव जी एकदम कुछ नहीं बोले। एक गोपी देखी कि एक भ्रमर, काला सा भ्रमर, राधा जी के पैरों को कमल समझ रहा है और उसमें प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है, और वो कृष्ण के ब्रह में सोने की पुतली, श्वास है कि नहीं कोई पता नहीं, पुष्पों की, कमल के पुष्पों के शैया के ऊपर में सोई हुई है, निष्पंदन, कोई भी स्पंदन नहीं है, श्वास चल रहे हैं या नहीं ये भी पता नहीं, और सखियां चारों तरफ से घेरे हुई हैं, वो उद्धव को लेकर के बाहर से अब भीतर की तरफ में प्रवेश करके देखा, सोने की कंचन पुतलिका और श्वास भी नहीं, अत्यंत क्षीण, कैसे जी रही है। उद्धव जी जाकर के बहुत दूर से साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काश्चित कोई गोपी, ये काश्चित किसके लिए? जो कृष्ण के विरह में तड़फड़ा रही है, समस्त गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है, महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि, जिसके अंग प्रत्यंग सब कुछ कृष्ण प्रेम से बना हुआ है, जिनका चित्त भी उस प्रेम से गठित हुआ है, प्रेम के अतिरिक्त उनके अंदर में कुछ नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है कृष्ण का, कृष्ण भी क्षुब्ध हो जाते हैं, उनकी सारी कामनाएं जिनसे पूर्ण होती हैं, वो कोई दूसरी गोपी नहीं हो सकती। वो कौन है? कृष्ण का प्राण है, कृष्ण के का प्राण है वो, तो वो कौन हो सकता है? यही राधा जी हैं, जो सबसे बड़ी आराधक है कृष्ण की, आराधना जिन्होंने की है वही राधा जी है। कैसे कह रहे हैं? व्यास जी ने ही तो समस्त पुराण लिखे हैं, वेदों को लिखा है, तापनियों को, राधा तापनी, कृष्ण तापनी,
गोपाल
तापनी इत्यादि लिखा है, और हरिवंश इत्यादि लिखे हैं, महाभारत का वो, और महाभारत इत्यादि लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा है, गर्ग संगीता इत्यादि का प्रकाश किया है, उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से ये नाम दिए हैं और वहीं से इंगित कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी करने से, उच्चारण करने से बस मुझे आ जाए, 7 दिन में वो काम होगा नहीं, इसलिए नाम नहीं लिया। एक बार आराधिता शब्द ये ही उच्चारण किया था, बस विषय भूल गए और जो प्रसंग चल रहा था उसको छोड़कर के दूसरे प्रसंग पर आ गए, वर्णन नहीं कर सके, इसलिए जानबूझ करके उससे थोड़ा सा कतराते रहे, नाम नहीं दिया। इसलिए यहां पर काश्चित, क माने ब्रह्म होता है, का माने ब्रह्मानी, ब्रह्म की जो शक्ति है वो, इसलिए वो राधा जी सर्वोत्तम, जो समस्त गोपियों में जो श्रेष्ठ है वो है। इसको कहते हैं, एक तो डायरेक्ट उसको कहते हैं और ये परोक्षवाद, भगवान को परोक्षवाद बहुत प्रिय है। परोक्षवाद माने क्या? किसी बात को डायरेक्टेड रूप में करना, तो परोक्षवाद प्रिय है, इसलिए परोक्षवाद में श्रीमद् भागवत है। देखो अभी तुम चले जाओ और उसका तात्पर्य है मत जाओ, कितने ऐसे प्रसंग भागवत में है, लाखों गोपियां समझती हैं, भक्त लोग समझते हैं, साधारण आदमी नहीं समझेंगे, वो कहेंगे राधा जी का नाम कहां? अरे राधा जी के लिए जो जो तुमको समझने के लिए चाहिए, पहले प्लेटफॉर्म तो तैयार करो, प्रेम तैयार करो, या ऐश्वर्य जैसे ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी अगोचर ये चीजें हैं। इसलिए वो गोपी उस भावना को देख करके मान कर लिया, क्या मान किया, देख रही यहीं से भाव नेत्र से, ये काला हमें यहां से छोड़कर मधुपुरी में गया है। मधुपुरी किसको कहते हैं? जहां पर मधु बिकता है। मधु किसको कहते हैं? जिसको पीने से आदमी मतवाला बन जाता है। ये मधुपुरी से ये मधु पाया है, मधुप मधुपकित बंधो मास पिशांघ्री शपथ कुछ बिललित माला कंकुमश्वाश्रुभिर्णा बहुत मधुपति तन माननी नान प्रसादम जद सदस विडम्बम जस दुस्तमित्र। ये श्रीमद् भागवत का सार ये सब चैप्टर है। इसी को उद्धव संदेश कहते हैं। संवाद मत समझना, संवाद एकादश द्वादश में है, ये संदेश है। ये दिव्य उन्माद, जिसको शायद आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुने होंगे, दिव्य उन्माद श्रीमद् भागवत इत्यादि में कहा गया है। उसमें भी चित्र जल्प इत्यादि हैं, उसमें भी और बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। इन 10-12 श्लोकों में ये 12 भाव आए हैं, अद्भुत, जो किसी भी वेद शास्त्र में नहीं प्रकटित हुए, किसी भी काव्य ग्रंथ में नहीं हुए, किसी भी काव्य, भरत के काव्य में या काव्य प्रकाश इत्यादि में, साहित्य दर्पण इत्यादि जो आजकल हैं, उनमें कहीं नहीं। भरत जो सबसे प्राचीन हमारे इस विषय के पारंगत हैं, कहीं नहीं जो इसमें प्रकटित हुआ है। भ्रमर गीत इसको कहते हैं। वो इससे प्रेम में शुद्ध होकर के देख रही है, ध्यायंती कृष्ण संगमम, कृष्ण का संगम देख रही है क्या? मथुरा में जादव पत्नियों के साथ में, कुमारियों के साथ में ये बैठे हैं, और ये वहीं से मदपान करके आ रहा। मधुपुरी माने मधु की ढेरी है, पूरी है, मधु बिकता है। और उस मधुपति कौन है? उसका मालिक जो चलाता है वो है वो कृष्ण मधुपति। और मधु जहां पर बिकता है वो है मधुपुरी, और उसको जो पीते हैं उसको कहते हैं मधुपौ। मधुप माने भौरा। अरे तू कहां से आया, बिगड़ गई, क्रोध हो गया। देखो इतना विवाह वियोग उसमें से इनको क्रोध हो रहा है, और देख रही हैं अरे ये तो गुप्त उनसे मिल रहा है, यहां से गया, अब बस क्रोधवान हो। उस विरह में भी ये कल्पना करने की बात ही नहीं है, बहुत उच्च अपने में जब भजन करते 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 लाखों जन्म में जब उस स्थिति में हम पहुंचेंगे तब समझ। ये तो गुरु वर्गों को हम लोग